हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 34 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आज हम केवल इसकी ही चर्चा करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रामाणिक गुरु की योग्यता जो है वो ये पहली मुख्य योग्यता यह है कि उसे परंपरा में होना चाहिए। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, यानी कि यथा मत तथा पथ का सिस्टम नहीं हो सकता। जिसका जैसा मत हो वैसा ही उसका पथ हो और उसको परम सिद्धि प्राप्त होगी, ऐसा नहीं होता है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य का आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। तो इसके संबंध में श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु का लेक्चर मैंने सुना, तो उससे हम कुछ आपके संग और बताना चाहने का करने का प्रयास करेंगे। तद्विधि प्रणिपातेना, तद का अर्थ है वो, और वो क्या है? जितने भी कर्म हैं और जितने भी यज्ञ हैं उनका पर्यवसान, उनका जो फल है वो दिव्य ज्ञान में होना चाहिए। और इस ज्ञान, उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें? तद्विधि, उसको हम तीन तरह से जान सकते हैं। प्रणिपात यानी कि नम्रता पूर्वक, नम्रता की भावना, परिप्रश्नेना यानी जिज्ञासु होना, और सेवया मतलब सेवा की भावना होना, और तब उपदेक्षन्ति। ये तीन उपहार जो हम गुरु को देते हैं तब वो हमको दिव्य ज्ञान में दीक्षित करते हैं। तत्वदर्शिना का अर्थ होता है कि वो सत्य को देखते हैं। इस सेक्शन में भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो फोकस है वो दिव्य ज्ञान है। वो ये नहीं कह रहे हैं भक्ति नाम, अपितु तो कह रहे हैं ज्ञानिनस। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण बताएंगे कि सभी ज्ञान का, सारे ज्ञान का पर्यवसान या कह सकते हैं रिजल्ट भक्ति में होता है। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो वाकई ज्ञानवान है वो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेगा। यानी कि अगर हम गुरु के पास जाएंगे और दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण की शरण हम ग्रहण करेंगे। लेकिन इस समय, इस अवस्था में, इस जगह भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में सीधे नहीं बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ज्ञानियों पे फोकस कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं किस प्रकार से कर्म योग से ज्ञान और ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान आगे और बढ़ता है तो व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। तो वस्तुतः ये ज्ञान मिलता कैसे है? मिलने का तरीका है एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना, और अगर हमें ज्ञान चाहिए तो आध्यात्मिक गुरु के पास ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए शब्द आया है ज्ञानिनस। इससे पहले हमको याद होना चाहिए, हमने चर्चा किया था तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में, किस प्रकार से जीवात्मा का ज्ञान काम के द्वारा आवृत रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः। तो इसमें, इस श्लोक में भगवान सभी जीवात्माओं को ज्ञानी के रूप में समझा रहे हैं। सभी जीवात्माएं ज्ञानी हैं, क्यों? क्योंकि हमारा सच्चा स्वरूप जो है वह सच्चिदानंद है, और इसलिए एक एक आत्मा के रूप में हम सभी लोग ज्ञानी हैं, हम सभी के पास ज्ञान है। लेकिन इस समय हमारा ज्ञान काम के काम रूपी जो शक्ति है उसके द्वारा आवृत हो गया है। तो आध्यात्मिक गुरु वो व्यक्ति हैं जो अपने इस आवरण को अनावृत कर चुके हैं, इस कारण से वो ज्ञानी बन गए हैं। क्योंकि गुरु ज्ञानी हैं, इस कारण से ज्ञानी होते हैं, इस कारण से वो तत्वदर्शी भी होते हैं। इसका मतलब है कि वो सत्य को देखते हैं, और सत्य को देखने के बाद वो हमको समझा सकते हैं। तो इसलिए हमको अपनी तरफ से तीन कार्य करने होते हैं। परिपातेना, यानी कि नम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना, परिप्रश्नेना आध्यात्मिक जिज्ञासा करना, और सेव्या यानी सेवा की भावना से युक्त होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें रहें, नम्रता, जिज्ञासु और सेवा की भावना, तो हम गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु की कृपा भगवान कृष्ण की कृपा है। एक प्रामाणिक गुरु हमारे लिए एक कोच की तरह होता है, कोचिंग तो आप सब लोग जानते होते हैं, और वो हमको मार्गदर्शन देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति करें। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि नम्रता का अर्थ क्या है। नम्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति ये समझे कि मुझको नहीं पता कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करूंगा। प्रणिपात का अर्थ होता है प्रणाम करना। हम अपने हृदय की आंतरिक भावनाओं को, आंतरिक व्यवस्था को नहीं समझते हैं, इसीलिए हमको नम्रता धारण करनी चाहिए। हमारे मन में भावना होना चाहिए कि हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें। वस्तुतः आध्यात्मिक जो रास्ता है ये एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें हम अंदर की ओर मुड़ते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। आत्मा हमारे अंदर है और हम ही स्वयं आत्मा हैं, लेकिन हम इस चेतना से युक्त नहीं हैं इस समय कि हम आत्मा हैं। इसलिए हम अपनी चेतना को अंदर की ओर मुड़ना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा, और तब हमको ये साक्षात्कार होगा कि हम आत्मा हैं। और उसके बाद हमको ये साक्षात्कार होगा कि किस प्रकार से आत्मा का भगवान कृष्ण से संबंध है, और भगवान कृष्ण भी हमारे अंदर हैं। हमें ये आंतरिक यात्रा करनी है, लेकिन इस समय हमें अंदर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए हमको इस यात्रा का जो पथ है वो पता नहीं है। तो ये बात अगर हम समझें तो हृदय में नम्रता आ जाएगी। एक प्रामाणिक गुरु इस रास्ते को जानते हैं और उस रास्ते को हमारे सामने प्रशस्त करते हैं। तो नम्रता का अर्थ है जिस प्रकार से हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और नम्रता से कहते हैं, मैं बीमार हूं, मुझे पता नहीं कि मेरी बीमारी का कारण क्या है, आप जानते हैं और मैं आपके पास आया हूं, और मुझे आप इसका हल बताइए। लेकिन अगर जो पेशेंट है वो सोचने लगता है, भावना करने लगता है कि वो डॉक्टर से बेहतर जानता है, तो फिर वो डॉक्टर के द्वारा चिकित्सित नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहली योग्यता है नम्रता। लेकिन नम्रता अपने आप में पूर्ण योग्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरु के सामने केवल गिरने मात्र से, यानी प्रणाम करने मात्र से हमें सारा ज्ञान हो जाएगा, बल्कि हमको ये प्रश्न भी करना पड़ेगा कि गड़बड़ हुई है कहां। जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु के सामने जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं, के आमी केने आमाए जारे तारापत्रे, मैं कौन हूं और मैं इस जगत में तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक कष्ट क्यों प्राप्त कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, और इस प्रकार की जिज्ञासा को ही जिज्ञासु कहा जाता है, जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम कहा जाता है। तो इस भगवद गीता की यहां पे आज्ञा जो है गुरु के पास जाने की, वो अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं दे रही, नम्रता के नाम पर हम अंधश्रद्धा न रखें, अपितु अपने आध्यात्मिक परसेप्शन क्या बोला सकता है, अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए हम गुरु के पास नम्रता से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुरु के सामने बस कोई जिज्ञासा ना करें या फिर भौतिक कोई जिज्ञासा करें। तो इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के एक्सपेंशन से या एडवांसमेंट से होता क्या है, हम भी उस प्रकार से देखते हैं जगत को जैसा गुरु देख पा रहे हैं। तो यानी कि अर्थ यह है कि जब हम नम्रता से गुरु से जिज्ञासा करते हैं तो हमें ज्ञान चक्षु प्राप्त होता है इस जिज्ञासा के द्वारा, और हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को डेवलप कर पाते हैं अपने जीवन में, हमारे पास शक्ति आती है आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त करने की। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आत्मा को तुरंत ही सच्चिदानंद रूप में देख पाएंगे, वो होगा अंततोगत्वा जब हमारा आध्यात्मिक दृष्टि जागृत हो जाएगी, लेकिन हम गहरे रूप से सोचना हमारे लिए संभव हो पाएगा। जब हम गहराई से सोचते हैं तो हम गहराई से इस जगत की वस्तुओं को देखते हैं, हम देख पाते हैं कि इस जगत की जो खुश हो जाने के, सुखी हो जाने के जो प्रस्तावना है, जो प्रस्ताव हैं वो सब झूठे हैं, बल्कि जो गीता के सत्य हैं वो इस जगत में हम देखना, प्रैक्टिकली होते हुए देखना शुरू करते हैं जिस प्रकार से गुरु देखते हैं। इसलिए नम्रता के बाद जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक गुरु हमें बताते हैं कि ये जगत दुख का घर है, यहां कोई सुख नहीं है, और हम देखते हैं आसपास सभी लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या फिर जो एडवर्टाइजमेंट बिल बोर्ड्स होते हैं जगह जगह, वहां पे दिखाया जाता है कि लोग बड़े प्रसन्न हैं, कोई टीवी लेके, फ्रिज लेकर के। लेकिन अद्भुत बात यह है कि उस एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही कुछ लोग लड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि खाली ये एक भुलावा है कि इस जगत में हम सुखी रह सकते हैं। तो ये जगत बाह्य रूप से, यानी कि छिछले रूप से, उपसतही रूप से हमको भले ही लगे कि इस जगत में बहुत सुख है, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के डेवलपमेंट से जब हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ जाता है तो हम इस सतह के नीचे देखने का शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस जगत में अगर वाकई लोग सुखी हैं भी, कुछ लोग, तो केवल कुछ काल के लिए सुखी हैं। अंततोगत्वा ये जगत जो है वो दुख का घर ही है। तो इस प्रकार से हम वैसे देखने लगते हैं जैसे कि गुरु देखते हैं। तो इसलिए नम्रता अपने आप में पूर्ण योग्यता नहीं है, नम्रता वो एक शुरुआती पॉइंट है जहाँ से हम लोग, जैसे लॉन्चिंग पैड बोलते हैं ना, जहाँ से जैसे लॉन्चिंग पैड मतलब से हेलीकॉप्टर का लॉन्चिंग पैड होता है, तो वहाँ उस स्थल पे आकर के ही उड़ान भर सकता है। तो अगर नम्रता नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक जीवन में तो आ ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से नम्रता हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में बहुत आवश्यक है, जिसमें हम स्वीकार करते हैं कि मुझे पता नहीं है, और उसके बाद हमको मालूम चलता है कि ज्ञान क्या है। जब हमें अपना बीमारी मालूम चल जाती है और हमको मालूम चल जाता है कि दवा क्या है, तो मुझे दवा लेनी भी होती है। अगर हम दवा ना लें तो अपनी बीमारी का बहुत अच्छा एनालिसिस करने के बावजूद भी वो बीमारी बनी रहेगी जिससे हम दुख भोग रहे थे। जो बीमारी है उसका ज्ञान केवल हमको ठीक नहीं करेगा, बल्कि हमको उसके अनुसार दवा खानी भी पड़ेगी, और इसी को यहाँ पे बोला गया है सेवया, सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा की भावना का अर्थ क्या है? हमारे आध्यात्मिक यात्रा का सबसे अंततोगत्वा, सबसे सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार ये है या ये होगा कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति ही हमारे सर्वोच्च सुख का, सर्वोच्च संतुष्टि का स्रोत है। और इस साक्षात्कार की तरफ हम प्रगति करते हैं कृष्ण की सेवा करके अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार, अपने मनगणन तरीके से नहीं। तो वो सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है क्या जो हम चाहते हैं? एक साक्षात्कार तो ये है कि हम शरीर नहीं हैं, एक साक्षात्कार ये कि कृष्ण भगवान हैं, और ये सब बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार हैं, लेकिन सबसे जीवन परिवर्तन करने वाला जो साक्षात्कार ये है जो हमारे जीवन का होगा कि कृष्ण और कृष्ण ही सभी रसों के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं। जो भी वस्तु कृष्ण के अलावा हमें सुख देने की हमको सुख देने का प्रस्तावना देती है वो अंततो गत्वा मुझे दुख ही देगी। सेवा कृष्ण की सेवा करके ही मुझे सबसे अधिक सुख प्राप्त होगा और उतना सुख मुझे इस जगत में किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं होगा। और इस प्रकार का साक्षात्कार, इस प्रकार की श्रद्धा अगर हमारे हृदय में आ जाती है तो इस जगत की जो लुभाने वाली चीजें हैं वो हमको अब बिल्कुल भी लुभाएंगी नहीं, माया हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो इस प्रकार के साक्षात्कार हमें कैसे प्राप्त हों? हमको इन सिद्धांतों के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कि भले ही इस समय हम लोगों को भगवान कृष्ण का सेवा में उतनी संतुष्टि प्राप्त ना हो, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते रहें, जितना प्रेम अभी हमारे पास है, जितनी श्रद्धा हमारे पास है, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम वो उस प्रेम को अपने हृदय में बढ़ा पाएंगे जो कृष्ण के प्रति है, और उसके द्वारा हमें साक्षात्कार प्राप्त होगा कि भगवान कृष्ण की सेवा करने से अधिक सुख इस जगत में ये कहीं पे भी नहीं है। तो अगर हम इस चीज को वापस से समराइज करें, नम्रता के द्वारा गुरु हमको मार्ग दिखा पाते हैं, जिज्ञासु होने के द्वारा हम उस मार्ग को स्वयं देख पाते हैं, और सेवा भावना के द्वारा हम उस पथ पे चल पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि आध्यात्मिक साक्षात्कार का जो पथ है वो निश्चित रूप से बहुत कठिन है। तो ऐसा क्यों है? हमने कहा था कि भक्ति तो बहुत आसान है करने के लिए, तो भक्ति अन्य योग पद्धतियों से बहुत आसान है करने के लिए सामान्यतः, लेकिन आध्यात्मिक पथ मुश्किल है। तो मुश्किल क्या है, समस्याएं क्या हैं? क्योंकि हमें अपने आंतरिक स्वभाव से युद्ध करना पड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और ये बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं जो हमको हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखना चाहते हैं, ताकि जन जन्मांतर हम इनकी सेवा करते रहें। इसीलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानसिक उहापोह और शुष्क तर्कों के द्वारा व्यक्ति सच्चे पथ पर नहीं आ सकता, और ना ही स्वतंत्र पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। ये हमको प्रारंभिक ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे रूप से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं और सच्चे पथ पर प्रगति करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अपने शिष्य की निश्चलता और सीरियसनेस, मतलब वो वाकई इच्छुक है, इसको वो परखते हैं। कृष्ण भावना में इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, मतलब सबके लिए ऑलमोस्ट एक समान है कि 16 माला का जब व्यक्ति कम से कम एक साल तक करे और 4 नियमों का पालन करे तो वो दीक्षा के योग्य हो जाता है। और गुरु को भी अपने क्षमा कीजिएगा, अपने शिष्य को भी अपने गुरु का परीक्षा लेनी चाहिए। आजकल के समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु के परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। तो आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या? तो आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में क्या उनका रोल है, क्या उनका महत्व है? आध्यात्मिक गुरु या गुरु हमको कृष्ण की तरफ मुड़ने का प्रयास कर मुड़ने के लिए योग्य बनाते हैं। वो खुद आचरण करते हैं और अपने कृष्ण से संबंध के द्वारा ऐसा करते हैं। और वो संबंध क्या है? परंपरा, यानी कि प्रभुपाद जी ने जैसे समझाया, एक प्रामाणिक गुरु को परंपरा में आना चाहिए। इस चौथे अध्याय की शुरुआत ही इस तरह से हुई थी, एवं परंपरा प्राप्तिम, यानी इस भगवद्गीता के ज्ञान को परंपरा में ही दिया गया था। तो आध्यात्मिक गुरु का मुख्य योग्यता ये है कि उसे परंपरा में होना चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि परंपरा केवल मस्तिष्क या बुद्धि का जुड़ाव नहीं है, अपितु हृदय का जुड़ाव है। अगर हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को देखें और उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की पुस्तकों को देखें, तो हम देखेंगे वो बिल्कुल काफ़ी भिन्न हैं। जो उसमें जो वस्तु है उसमें भिन्न नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उस ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है, जिस स्टाइल से प्रस्तुत किया गया है, उसमें भिन्नता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग वो एक व्यक्ति हैं। जो उसका अर्थ नहीं है कि शिष्य जो है वो एक रोबोट की तरह, एक रिकॉर्डर की तरह गुरु के ज्ञान को, जो गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको रिपीट करेगा। हो सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में इस प्रकार से करना पड़े, लेकिन जो मुख्य बात ये है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रामाणिक गुरु की यही एक योग्यता है कि बस वो ज्ञान को एक तोते की तरह रिपीट करता जाए। जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो इन सिद्धांतों के अनुसार रहते हैं जो कि शास्त्र में बताए गए हैं, और जब शिष्य देखता है कि गुरु निस्वार्थ भक्ति के सिद्धांत के अनुसार रह रहे हैं, तो शिष्य को भी प्रेरणा मिलती है इस प्रकार से स्वयं सिद्धांतों का पालन करने के लिए। क्या होता है उसके बाद, ये होता है कि जो भक्ति के सिद्धांत, भक्ति के साक्षात्कार आध्यात्मिक गुरु के हृदय में है, वो शिष्य के हृदय में स्थानांतरित हो जाते हैं। और जब इस शिष्य के हृदय में इस प्रकार से भक्ति के सिद्धांत स्थानांतरित होते हैं गुरु की प्रसन्नता के द्वारा, तो उन दोनों के हृदय आपस में लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो परंपरा जो है ये हृदय का जुड़ाव है, खाली बुद्धि का जुड़ाव नहीं। और हृदय जुड़ते हैं निस्वार्थ भक्ति, प्रेममय भक्ति के सिद्धांतों के आधार पर। जब आध्यात्मिक, जब जो शिष्य है वो इस भक्ति के सिद्धांत को हृदय में धारण करके खुद प्रगति करता है, तो वो आने वाले अपने शिष्यों को भी इस प्रकार से प्रेरणा देता है, और वो भी भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, और उससे वो उनका जीवन परिवर्तित होता है। तो जो भक्ति है वो परंपरा को, जो 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 लिंक है परंपरा का, वो है भक्ति। तो जो परंपरा है वो हृदय का जुड़ाव है, ना कि केवल बुद्धि का जुड़ाव। तो परंपरा क्या करती है ये हमें समझ में आना चाहिए। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, हो सकता है, लेकिन पुण्यात्मा होने का अर्थ ये नहीं है कि वो आध्यात्मिक भी हो। इस जगत में बहुत से लोगों का एक पुण्यात्मक व्यवस्थिति होती है, वो दान देते हैं लेकिन त्याग, और वो अच्छे काम करते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जो पुण्य जीवन है वो सतगुण में होता है, और ये जीवन आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तित होता है जब गुरु से हमारा संबंध होता है, और दूसरा, हम जब गुरु के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को या मार्ग पे दृढ़ता से चलते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है तद्विधि प्रणिपातिना परिप्रश्न सेवा। इसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध होता है, आध्यात्मिक रूप से चेतनाशील होता है, और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं, मेरा तो भगवान से सीधा संबंध है, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु मेरे और भगवान के बीच में क्यों आ रहे हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि गुरु हमारे और भगवान के बीच में नहीं आ रहे हैं, अपितु हमारे और भगवान के जो बीच में है उसको वो हटाते हैं। और वो क्या है? वो है मिथ्या अहंकार की दीवार, और वो दीवार है हमारे भ्रांतियों की, और उस भ्रांति के कारण हमारी बुरी इच्छाओं की। आत्मा और परमात्मा, हम शास्त्र सुनते हैं, दोनों पड़ोसी हैं। सामान्य वृक्ष, एक वृक्ष पर जिस प्रकार से दो तोते रहते हैं, इस प्रकार से आत्मा परमात्मा हृदय के आकाश में रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में भ्रांति की एक बहुत बड़ी दीवार है। आत्मा सोचती है कि मैं स्वतंत्र जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, और इस कारण से सोचता है कि मैं शरीर का भोक्ता हूँ। ये भ्रांतियाँ हैं और ये बुरी इच्छाएँ हैं, और ये बुरी इच्छाएँ आत्मा की चेतना को कृष्ण से अलग लेके जाती हैं। तो आध्यात्मिक गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं और वो तरीका बताते हैं जिसके द्वारा इस दीवार को तोड़ा जा सके। आध्यात्मिक गुरु अंततो गत्वा हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। सो हमको अपने गुरु के द्वारा मालूम चल पाएगा कि प्रमाणिक भक्ति क्या है, इसलिए प्रमाणिक गुरु बहुत आवश्यक है। जो कोई कहता है कि मैं अपना गुरु स्वयं हूँ, उसका चेला जो है वो मूर्ख है, क्योंकि हम अपनी ही शक्ति से अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। कृष्ण सब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, कृष्ण सबके हृदय में है, तो कृष्ण अपने आप को स्वयं ही क्यों नहीं प्रकट कर लेते? अगर कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं तो वो मुझे गुरु के पास क्यों भेजते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं गुरु के पास जाऊं? भगवान कृष्ण तो स्वयं ही अपने आप को मेरे हृदय में प्रकट कर सकते हैं। तो ये सत्य बात है, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि कृष्ण क्या कर सकते हैं, अपितु कृष्ण क्या करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान इस भगवद्गीता के श्लोक में बोल रहे हैं कि यदि हमें ज्ञान चाहिए तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। कृष्ण सभी जीवात्माओं को प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण उसी समय में एक आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं, और कृष्ण उन लोगों को अधिक प्रेम करते हैं जो उनको उनसे प्रेम करते हैं। कृष्ण उन भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं जो जिन्होंने इस जगत की सभी वस्तुओं को त्याग करके उनकी शरण ली है उनकी भक्ति के लिए। उनका जीवन, ऐसे शुद्ध भक्तों का जीवन शुद्ध भक्ति पे एकदम फोकस रहता है। तो कृष्ण इस प्रकार से ऐसे भक्तों को पुरस्कृत करना चाहते हैं, और अंततो गत्वा ये जो पुरस्कार है वो कृष्ण प्रेम के रूप में होगा जो उन भक्तों को हृदय में अनुभव होगा, और भगवान के धाम जाने का पुरस्कार। लेकिन इस जगत में भी भगवान उन भक्तों को पुरस्कृत करना चाहते हैं, लेकिन वो भक्त तो इस जगत पे कुछ चाहते नहीं, तो कृष्ण किस प्रकार से उनको पुरस्कृत करेंगे? तो कृष्ण उनको पुरस्कृत करते हैं इस जगत के बाहर निकलने के रास्ते के ऊपर अधिकार देने के द्वारा। ये जगत दुख का घर है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु जगत में है ये वो मार्ग जिसके द्वारा हम जगत से बाहर निकल सकते हैं। जैसे आप जेल में हैं, तो जेल में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है कि आपको चाबी मिल जाए दरवाजे की, जिसके द्वारा आप जेल से बाहर निकल जाओ। तो ये जगत दुर्ग की तरह है, और दुर्गा देवी इस जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, और इस जगत में जीवात्माओं को फंसा करके रखती हैं, और त्रिविध ताप उनको वो देती रहती हैं, ताकि और जिसके द्वारा वो धक्का देती हैं कि तुम जीवात्माओं को कि तुम इस जगत में मत रहो, अपितु तुम कृष्ण की तरफ जाओ, भगवान कृष्ण की तरफ वापस जाओ। तो इन दुखों का उद्देश्य हम लोगों को दुख देना या परेशान करना नहीं है, अपितु हमारा हृदय का शुद्धिकरण करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये ज्ञान जिसके द्वारा हम इस जगत से बाहर निकल सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भगवान कृष्ण ये केवल अपने भक्तों को देते हैं जिनके हृदय में निस्वार्थ भक्ति है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अपने भक्तों से, तुम मेरे भक्त हो तो तुम इस ज्ञान के वितरणकर्ता बनो, डिस्ट्रीब्यूटर बनो। इसलिए एक भक्त के प्रति नम्रता का भाव हुए बिना ये ज्ञान हमारे हृदय में उदित नहीं होगा। हो सकता है सिद्धांतिक रूप से हम इसको समझ पाएं, लेकिन हृदय को परिवर्तन करने के रूप के का परिवर्तन नहीं होगा। सिद्धांतिक ज्ञान हमारे प्रेम को इस जगत की वस्तुओं से मोड़ करके कृष्ण की तरफ लेके जाने में संभव नहीं होगा, और अगर हम वो करना चाहते हैं तो हमें गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, उनसे भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति इस जगत से बाहर निकलना चाहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए, और उसके बाद ही वो मालूम कर पाएगा कि इस जगत के वो बाहर कैसे निकल सकता है। एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य के प्रति बहुत दयालु होते हैं, और वो मदद करते हैं कि वो जगत से बाहर कैसे निकल पाए। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु बहुत आवश्यक हैं, और हमें गुरु को ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई गुरु करना देनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात मानेंगे तो हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये रिजेक्शन की भावना को हमें वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाइड करना चाहिए और जो लोग प्रमाणिक गुरु नहीं हैं उनको रिजेक्ट करना चाहिए और अपने जीवन में एक प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करके अगर हम भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हम शुद्ध होंगे, हमारा जो चित्त है वो, हमारा जो चेतना है वो शुद्ध होगी और अंततः हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।